इस समय सेनेट कुछ अस्त व्यस्त सी हो गई है, अपर हाउस में फैमिली फर्स्ट सेनेटर बॉब डे की स्थिति को लेकर। इस पर कानूनी सवाल भी उठ सकता है और इसका अर्थ होगा साउथ ऑस्ट्रेलियन सेनेटर वोट्स की दोबारा गणना, और इस पर भी कोई गारंटी नहीं होगी कि उनकी जगह आने वाला दूसरा व्यक्ति उसी पार्टी का होगा। तो अब इसी पर एक रिपोर्ट। सेनेटर बॉब डे ने मंगलवार को त्यागपत्र दिया जो तुरंत लागू हुआ। फेडरल विपक्ष अब चाहती है कि सरकार ये स्पष्ट तौर पर बताए कि उसे कब पहली बार पता चला कि सेनेटर बॉब डे को अप्रत्यक्ष रूप से कॉमनवेल्थ से फायदा पहुंच रहा था। रिपोर्ट है कि हाई कोर्ट इस बात पर विचार कर सकता है कि सेनेटर बॉब डे को जुलाई में सेनेट के लिए निर्वाचित करना क्या न्यायसंगत था, जबकि ये चिंता थी कि उनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा चुका होगा। ये माना जा रहा है कि सरकार ने उसी बिल्डिंग में एक चुनाव ऑफिस किराए पर लिया हुआ था जिसमें सेनेटर के आर्थिक तार जुड़े हुए थे। अगर ये सही साबित होता है तो वो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य साबित होंगे। संविधान में सेक्शन 44 के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कॉमनवेल्थ के साथ किसी भी धन संबंधी अनुबंध यानी एग्रीमेंट रखता है तो वो सेनेट या सांसद होने के लिए अयोग्य साबित होगा। लेबर के कानूनी मामलों के प्रवक्ता रिचर्ड ड्रेफस का कहना है कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी।
But when did they first know of the facts? That's the question. When did they first know that this electoral office, which Senator Day has been in for a long time, was a building in which, as is apparently alleged, he had a direct or indirect pecuniary interest? I mean, that's the question. And if it's months and months ago, why didn't they investigate it before now? Is this the matter that the now resigned Solicitor General, Justin Gleeson, disclosed that he had advised on, namely a question to do with the composition of the Senate, which we learnt last month in a Senate committee inquiry hearing.
और अब सरकार के सामने सेनेट में अनिश्चित सी स्थिति बनी हुई है और सेनेट इस वर्ष के अंतिम सदनों में है। कई ऐसे लेजिस्लेशन हैं जो श्री बॉब डे के समर्थन पर निर्भर करते हैं। अब उनकी जगह कौन आएगा ये भी अगले कई हफ्तों तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब अगर हाई कोर्ट कानूनी तौर पर श्री डे को सेनेटर के लिए उनकी स्थिति को योग्य मानता है तो फैमिली फर्स्ट उनकी जगह किसी और की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन अगर ये साबित होता है कि श्री डे का निर्वाचित होना गैर कानूनी स्थिति है तब साउथ ऑस्ट्रेलियन सेनेट वोट की दोबारा गिनती होगी और निर्णय लिया जाएगा कि उनकी जगह कौन लेगा। इसका अर्थ है लेबर या वन नेशन पार्टी में से किसी की नियुक्ति हो सकती है। स्थिति कुछ भी हो, वेटरन अफेयर मिनिस्टर डैन टीहन ने एबीसी को कहा कि सरकार चाहेगी कि मामला हाई कोर्ट में जाए।
The potential referral to the High Court relates to section 44 of the Constitution regarding a potential indirect pecuniary interest in a contract with the Commonwealth. So that is what the matter relates to.
और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर मिथास कार्मन ने एबीसी पर कहा कि चाहे सदस्यों पर अनिश्चित स्थिति है पर सरकार संसद में प्रमुख लेजिस्लेशन को लागू करना चाहेगी।
We'll continue to work with all senators from across the political divide in relation to these measures, explaining why, for example, the restoration of the IBCC is so important to our future economic success.
Constitutional lawyer जॉर्ज विलियम्स ने एबीसी को कहा कि कोर्ट इस मामले पर तत्परता से काम करेगी।
In a case like this, you normally would expect the High Court would act as quickly as possible, as it does with elections and other matters of political sensitivity, because obviously one vote in the Senate at the moment could make a big difference.
Senator Day ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वो सेनेट को छोड़ देंगे ताकि वो उनकी नेशनल बिल्डिंग कंपनी के मामलों पर ध्यान दे सकें। लेकिन पिछले सप्ताह उन्होंने इंगित किया कि वो शायद इस पर टिके रहें इस वर्ष के अंत तक यदि कोई इन्वेस्टर उनकी कंपनी को उबार सके। अब سینیٹر ڈے کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور کہا ہے کہ ان کا یہ اوپچارک اور اچانک سے دیا گیا تیاگ پتر آیا ہے کیونکہ انویسٹر پیچھے ہٹ گیا۔